Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
शुभ संध्या, नमस्कार. मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की संजीदा चाल पर भी करेंगे चर्चा. चर्चा को अपने विचारों से समृद्ध करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, आपका अभिनंदन, अभिवादन. कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत.
जी शुक्रिया, थैंक यू.
चर्चा को आरंभ करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
Benchmark domestic indices continue the upward trend. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 23,100. Major Asian stock markets end mixed and global crude oil prices rise.
देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगातार बढ़त जारी. सेंसेक्स में 500 अंक से अधिक का उछाल, वहीं निफ्टी 23,100 के ऊपर बंद. एशिया के शेयर सूचकांकों में रहा मिलाजुला कारोबारी रुख और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी.
And before we take our main stories in detail, let's have a look at the disclaimer announcement. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for making और टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन.
श्रोताओं, आइए जानते हैं कि आज पूरे दिन में हमारे भारतीय शेयर बाजारों ने कैसा प्रदर्शन किया. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों ने आज उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद लगातार चौथे सत्र में लगभग 0.7% की बढ़त दर्ज की. सेंसेक्स 510 अंक बढ़कर 74,617 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 155 अंक बढ़कर 23,124 पर स्थिर हुआ. विस्तृत बाजार में मिड कैप 100 में 0.2% की बढ़त दर्ज की गई, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ. सत्र की शुरुआत 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ हुई और पहले सत्र में मंदड़िये बाजार पर हावी रहे. वहीं दूसरे सत्र में जोरदार रिकवरी हुई और अंततः बाजार मुनाफे के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही सूचकांकों ने अपने अंतरदिवसीय सबसे निचले स्तर से छलांग लगाई. सेंसेक्स में 1,300 अंकों से अधिक का उछाल आया, जबकि निफ्टी ने 400 अंकों से अधिक की रिकवरी की.
Benchmark domestic equity indices climbed around 0.7% after a choppy trading session today, extending the winning streak for a fourth straight session. Sensex rose by 510 points to close at 74,617, while Nifty added 155 points to settle at 23,124. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 gained 0.2%, while a small-cap 100 closed marginally lower. The markets opened the day with a gap down of over 0.5% and traded in the negative zone during the first half. However, in the latter half, they staged a strong recovery and ended the session on a bullish note. Sensex rebounded by over 1,300 points, while Nifty recovered more than 400 points from their intraday lows.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में एचसीएल टेक लगभग 2.8%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लगभग 2.7% और इन्फोसिस में 2.6% की वृद्धि हुई. वहीं घाटे में रहे शेयरों में सबसे पहला नाम इंडिगो 0.9%, अदानी पोर्ट्स 0.5% से अधिक और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई.
Among the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 20 out of the 25 sectors ended in the positive territory. Among the top gainers, a focused IT surged nearly 2.5%, IT rose almost 2.4%, and realty advanced 1.7%. Among the top drags, PSU banks lost 0.8%, services fell about 0.4%, and mid-small private banks dipped over 0.2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,671 companies advanced, 1,555 companies declined and 155 companies remain unchanged.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 8 पैसे मजबूत होकर 92.98 रुपए पर बंद हुआ. डॉलर सूचकांक जो अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाता है वो दिन के कारोबार में 99.99 पर कारोबार कर रहा था. डॉक्टर शर्मा, अभी हम अपने श्रोताओं से मिलने से पहले हम अर्जुन और आप मिलकर के बाजार की दशा और दिशा की बात कर रहे थे
जी.
तो आपने हमसे साझा किया कि बाजार की दशा और दिशा को आप अभी भी संभावित तौर पर अच्छा देखते हैं.
जी बिल्कुल प्राची, मैं दशा और दिशा दोनों को अच्छा देखता हूँ. ये जो वॉलीटिलिटी है, खास करके जो भी हमने मार्च के महीने में देखी, जो फेब 28 से शुरू हुई
जी.
और अभी हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव है और हम देखते हैं कि मार्केट एक बार ऊपर जाके अगले दिन डिक्लाइन करती है, कई बार 2-3 दिन ऊपर जाती है तो उसके बाद करेक्शन आती है, क्योंकि मार्केट्स थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं ग्लोबल परिस्थितियों को लेके, खास करके जो अभी युद्ध चल रहा है जो ईरान और यूएसए के बीच में
जी.
तो उसके जो पहलू है, जो उसके संदर्भ हैं, जो उसमें अनाउंसमेंट्स होती हैं, वो कुछ भी डायरेक्शन नहीं ले रही है. खास करके जो ट्रंप साहब एक नई स्टेटमेंट मेरे ख्याल से हर रोज देते हैं तो जिसका वॉलीटिलिटी और इंक्रीज होती है. कई बार वो मार्केट्स पॉजिटिवली मूव करती हैं तो कोई स्टेटमेंट ऐसा आएगा कि मार्केट्स अगले ही दिन में काफी आपको डीप करेक्शन में दिखेंगी. कई बार मार्केट्स बहुत डीप करेक्शन में होती हैं तो आपको अगले दिन जो है एक बहुत बड़ी रिकवरी दिखेगी.
यानी कि आप
तो कुल मिला के जो है मार्केट्स जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे शेप देनी है, हॉर्मुज की जो न्यूज आती है उसी के बेसिस पे जो मार्केट्स का रवैया है वो रहता है. तो जैसे आपने कहा कि दशा और दिशा भारत के संदर्भ में दोनों ही मजबूत हैं, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, अगर हम मार्च के महीने में ही देखें, फेब में जंग शुरू हुई 28 फेब को, तो मार्च के इंडिकेटर जो है उनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हमारे जीएसटी कलेक्शंस हैं 2,00,000 करोड़ के ऊपर हैं, हमारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस टॉप पे हैं, 21-22 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए. उसके अलावा जो हमारा ग्रोथ रेट है, जो आईआईपी नंबर्स हैं, हमारा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, भले ही वो फेब मंथ का है, वो भी स्टेडी है. रेल फ्रीट जो एक इंडिकेटर है वो हमारा काफी मजबूत है. तो कुल मिला के जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं वो एक पॉजिटिव दशा और दिशा दिखा रहे हैं. इसके अलावा जो ओवरऑल हमारी ट्रेजेक्टरी है, जो ओवरऑल हमारा इकोनॉमी का जो गति है, जिसके ऊपर हमने 7.6% का जो ग्रोथ रेट है वो 2025-26 के लिए रहेगा और इस वर्ष के लिए वो लगभग 7% रहेगा या इससे थोड़ा ऊपर रहेगा, तो बहुत ही सुदृढ़ है. तो कुल मिला के मैं समझता हूं कि ये जो वॉलेटिलिटी है ये एक सेंटिमेंटल, एक जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स की वजह से हमारी मार्केट्स में आती है. नहीं तो आप देखिए कि एक दिन बहुत बड़ी बढ़त के साथ मार्केट्स बंद हुए, अगले ही दिन गिरे, तो ऐसा फंडामेंटल्स में रात में क्या चेंज आया?
नहीं, यहीं पर एक सवाल ये फंसता है कि आपने जैसा कि कहा कि जितने भी हमारे वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके वक्तव्य पर इमोशन ड्रिवन होकर के बाजार में जो है उत्साह कभी बढ़ता हुआ नजर आता है, कभी घटता हुआ नजर आता है. तो अभी लगातार 4 सत्रों में हम देख पा रहे हैं कि बढ़ोतरी का दौर है
जी.
तो आखिर ऐसा क्या है सुर्खियों में जो ट्रेडर्स को नजर आ रहा है और हमें नहीं नजर आ रहा है?
देखिए उसमें क्या है, सबसे बड़ा जो पहलू है वो कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है कि शायद अब ये जंग जो है सेटल होगी, क्योंकि इस जंग का अभी कुछ निर्णय नहीं हो पाया. तो यूएस ने भी बोला है कि कुछ ही ये जंग जो है बहुत जल्द बंद होने वाली है. तो उसी के मद्देनजर कि जंग जब बंद होगी तो परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी, तो मार्केट्स उसको उस तरीके से देख रही हैं कि शायद आने वाले टाइम में इसका कुछ सेटलमेंट हो जाए. तो क्योंकि बाकी तो और कुछ प्रॉब्लम है नहीं है. इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरी कोई ऐसा इशू नहीं है. जो टैरिफ का पहले होता था वो भी अभी ऑलमोस्ट सेटल हो गया है, तो ऐसा कोई और नेगेटिव नहीं है जो मार्केट्स को इम्पैक्ट करे. खाली एक ही चीज है कि पीस होना चाहिए, और हम समझते हैं कि इस वॉर का भी शायद ऑब्जेक्टिव तो पीस ही है एंड ऑफ द डे. तो जब वो सामने आएगा तो मार्केट्स वापस एक बहुत अच्छा रिबाउंड लेके आएंगे. क्योंकि आप देखिए कि अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी लगती है तो मार्केट्स एकदम से शार्पली रिबाउंड करते हैं। आप देखिए कि अगर परमानेंट पीस आ जाता है तो मार्केट्स कहां पे जाएंगे।
और डॉक्टर शर्मा, जियोपॉलिटिक्स एंड ऑयल हैज बीन डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल, एस्पेशली द वॉर इन यूक्रेन एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द मिडल ईस्ट इज वेल, बट राइट नाउ इन द मंथ ऑफ अप्रैल द फोर्थ क्वार्टर corporate results are being declared today. One result was declared. Total of more than 5,000 companies are going to be declaring their fourth quarter results, large cap, mid cap, and the small cap companies as well. Do you see any opportunities for buying? Because experts are saying that this is the right time to buy because the price to earnings ratio is low. We saw the IT index go up by 2.5%. There's a lot of value buying in those counters. The results have not been fully declared yet. What do you think would be their results? Because they're bellwether stocks. And what are the opportunities in the other sectors?
Yes, Arjun, very good question. Because now markets are at 2 years low. Markets are at the level of 2023. So I would say this is a great opportunity for many sectors. I would say almost all the sectors. As you rightly mentioned that our EPS is very favorable now. And some retailers or some long-term investors can enter in the market right now at these levels, because these levels are very crucial levels, because markets are consolidating at these levels, because sometimes though there are corrections, but markets stop here at around 23,000 Nifty. So that is a great base for the markets and to move forward and to invest at these levels. I would say the infrastructure and energy sectors are a great growth story going forward to invest in these two major sectors to for the fruitful returns in the coming times. The markets will remain volatile in the coming times. If the PC is also established, then in that case also markets can remain volatile. But the mood of the markets will be positive towards the higher trajectory.
तो ऐसे 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 परिदृश्य में आप निवेशकों के लिए क्या क्या एक सलाह है जो आप देना चाहेंगे? क्योंकि कॉलर्स डे पे कई बार हमारे निवेशक, हमारे यानी जो श्रोता हैं, जो निवेशक भी हैं, वो कॉल करके ये सवाल पूछते हैं हमसे, तो आपसे मैं इस पर एक मतलब राय जानना चाहूंगी।
देखिए प्राची, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि रिटेलर्स के लिए खास करके सबसे बड़ी जो चीज है वो एक ग्रेजुअल स्टेप्स होने चाहिए। जो भी इन्वेस्टमेंट है वो एक ही बार में नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी इन्वेस्टमेंट इन अ सिंगल गो। उनको अपने स्टेप्स में इन्वेस्ट, क्योंकि आज जो मार्केट है कल वो नहीं होगी, राइट? तो आपको स्टेप्स में इन्वेस्ट करना है। अगर आप आपका प्लान मान लीजिए 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करने का है, तो सबसे पहले उसके चार स्लॉट्स में 25-25 करके इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक ही बार इन्वेस्ट करने से अगर मार्केट्स का रुख अगले दिन चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल सिचुएशन, तो उनको लॉस हो सकता है। तो SIP जो है इस टाइम पे एक बहुत बढ़िया माध्यम है, जिसके जरिए रिटेलर अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कर सकते हैं और उसके उनको आने वाले टाइम में फ्रूटफुल परिणाम मिलेंगे।
Clearly, the day trader approach is not healthy for the small investor. Apart from the earnings results that are going to be declared by the companies, the other indicator that investors are looking at is the RBI meeting that is to be held tomorrow by the Monetary Policy Committee. There are a lot of estimates in terms of what the rate revision is likely to be. Is there going to be one? Because repo rate right now is 5.25%. Reverse repo is 3.35%. What is going to be the view of the Monetary Policy Committee? Are they going to be expanding credit growth, or will they look at contraction now?
I don't see any change in the repo rate because conditions are not that much supportive for increase or decrease in the repo rate. Because we have to support the growth also. For that, repo rate needs stability. And we have to address the demand also. In that case, we have to again maintain the repo rate at this rational level. So I think as per the consensus of many economists or the policy makers, the repo rate will remain same. There may be some change in the reverse repo that can be expected to maintain the liquidity condition in the economy. But repo rate is not seen changing टुमारो अकॉर्डिंग टू द मेनी एक्सपर्ट्स।
जी श्रोताओं, अभी तक हमने जाना भारतीय बाजार की उथल पुथल और उतार चढ़ाव के बारे में, अब आइए रुख करते हैं हम एशिया और यूरोप के बाजारों की तरफ। आज प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों का मिला जुला कारोबारी रुख रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 0.8% से अधिक, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स लगभग 0.3% बढ़ा और जापान का निकेई मामूली रूप से ऊपर रहा। वहीं सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.3% के घाटे के साथ बंद हुआ। उधर हांगकांग में अवकाश के कारण बाजार की कोई गतिविधि नहीं रही। यूरोप के बाजारों की अगर बात करें तो प्रमुख यूरोपीय शेयर सूचकांकों में भी आज मिला जुला रुझान देखने को मिला। जर्मनी का डैक्स 0.3% नीचे आया, लंदन का फुटसी 0.2% नीचे आया, जबकि फ्रांस का कैक अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.3% ऊपर कारोबार करता नजर आया।
डॉक्टर शर्मा, देयर आर टू क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एशियन मार्केट्स एंड बोथ आर इन मेनी वेज लिंक्ड टू ऑयल एंड द यूएस डॉलर। द यूएस डॉलर इज फर्म्ड अप almost 100 in the US dollar index, and what we are seeing is that the Japanese yen has become even cheaper now. Do you see borrowings in yen actually go up, which is a great feedstock for investment into the US market? And secondly, how do you see the European indices in light of the oil shock, oil prices going up?
Yes, Arjun, because markets are impacted by the oil shock firstly, and dollar is gaining strength because of this oil shock. Actually, the currencies of the many emerging markets are undermined because of the high crude oil prices. But once the deal is settled or peace is there, then I think all dollar will again be in the actual strength of 97-98 once again, because of the deceleration in the crude oil prices, which is anticipated in the coming times when the peace is established. Second, borrowings. Yes, I totally agree with your connotation that that is the right time for Japan for the borrowing segment. So I agree with you. Yeah.
Well, let's have a look at the US markets now. Wall Street ended on a positive note yesterday. Among the major stock market indices, the Nasdaq Composite Index climbed over 0.5%. The S&P 500 rose more than 0.4%. And the Dow Jones Industrial Average added nearly 0.4%. The US stock market has been responding to President Trump's promise that the war will be ending soon. And then, of course, there is a comment which tends to be contrary to that. How do you see the U.S. market stabilizing in view of the war that's happening in the Middle East right now?
There are two scenarios, Arjun. First is if the war is ending with peace. And second is the war is ending with a lot of destruction. So if in the scenario one, the markets will take it very, very positive and move up significantly. But in the second scenario, if the war is ending with destruction, that can impact the whole world market significantly and undermine the currency scenarios once again.
There's also the borrowing demand by President Trump for $1.5 trillion in terms of the military budget. Right. How is the US economy looking at that liability?
Yes, that will again, as I earlier said, that will again impact the dollar index, and dollar index may decelerate to the actual levels of 97-98 in the coming weeks. That will be a great boost for the metals, particularly gold and silver. So now situation is very dynamic. So in the first scenario, if the peace is established, in that scenario, the dollar will decelerate and support the metal prices. In the second scenario, there may be some great volatility or deceleration in the global markets, in the financial markets and in the commodity markets also.
So you see inflation picking up in the US because employment seems to be relatively stable.
Inflation is now stabilizing, but not coming at the tolerance level of US, but still not going up also. So we have to look at the coming numbers. Then inflation trajectory will move according to the employment scenario and the US take on this war.
FIIs, FPIs have been the net sellers in our market. These are hedge funds who invest in our markets, but they have been selling constantly.
Yes.
What is their outlook right now? Are they looking to invest into treasury securities, bonds, which give you a higher rate of return? Is that what they're looking at?
Arjun, firstly, we are not that much dependent on the FIA and FPIs. Now, our market is becoming more and more resilient with the support of the retailers and our DIIs. That should be, because we have to become Atmanirbhar and we have to support our market with our own money. So if the FIIs are finding some opportunity at the lower level, with the anticipated growth at the higher level, then the markets will move significantly with the support of such money. But the markets are self-sufficient now. We have observed during the last many years, retail participation is increasing. Retail transactions also increasing, more than 45% of the retail transactions now in the market. So there is no significant impact of the FIIs withdrawing money or not investing in the market, because our markets are becoming more and more resilient and strong with the support of our domestic investors.
In more news, Foreign Secretary Vikram Misri will be on a three-day visit to Washington, D.C. in the U.S. from tomorrow. During his visit, a Foreign Secretary will hold discussions with senior officials of the U.S. administration on a wide range of issues, including trade, defense, science and technology, as well as regional and global developments of mutual interest. The External Affairs Ministry said that this visit will provide an opportunity to review the full spectrum of India and U.S. bilateral relations and advance ongoing cooperation across key areas.
डॉक्टर शर्मा, जैसा अभी अर्जुन ने पढ़ा, तो संभावित तौर पर आप इस दौरे के लिए आप क्या प्रोस्पेक्ट्स आप देख पा रहे हैं?
प्रोस्पेक्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि हमारा जो जो डील है, जो हमारे बायलेटरल रिलेशंस हैं, अगर हम इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में देखें तो बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज वी नीड ईच अदर एंड देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटीज बिटवीन बोथ ऑफ अस to move forward and to exchange many economic treaties or economic bilateral exchanges. So I look forward that this will strengthen the trajectory of bilateral relations and strengthen investments and particularly the trade between the two economies.
Short comment on tariffs.
I would say the tariff situation is in favor of India, because there are challenges to tariffs in US also. So now they are settling this throughout the world, and India is particularly gaining from such developments in the US.
आगे बढ़ते हैं श्रोताओं. सरकार ने राज्यों में प्रवासी मजदूरों को वितरित किए जाने वाले 5 किलोग्राम के फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों के दैनिक आवंटन को दोगुना करने का निर्णय लिया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि ये 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर राज्य सरकारों और उनके खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभागों को केवल अपने राज्य में प्रवासी मजदूरों को तेल विपणन कंपनियों के सहयोग से आपूर्ति करने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे.
एंड इन मोर न्यूज, दिस टाइम फ्रॉम The PLI scheme.
जी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के उत्साहजनक परिणाम आए हैं. इसमें लगभग 7,000 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध निवेश के मुकाबले कुल निवेश 9,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ये निवेश दर्शाता है कि कंपनियों ने अपने प्रारंभिक निवेश प्रतिबद्धताओं को पार कर लिया है. नई दिल्ली में मंत्रालय के संयुक्त सचिव डी प्रवीण ने कहा कि इस योजना ने उत्पादों की बिक्री और निर्यात में वृद्धि में भी योगदान किया है. उन्होंने बताया कि पीएलआई उत्पादों की बिक्री में 10.5% से अधिक और निर्यात बिक्री में करीब 7.5% की वृद्धि हुई है. डॉक्टर शर्मा, आप कितना महत्वपूर्ण इसे देख पाते हैं?
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो निर्धारित एक इन्वेस्टमेंट सिनेरियो था, उसके हम आगे सिग्निफिकेंटली आगे निकल गए हैं. और दूसरा, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है
जी.
इसका हमारा एक्सपोर्ट भी काफी इंक्रीज हुआ है. लगभग कोई हम $30 बिलियन के आसपास थे कोरोना के टाइम पे, नाउ वी आर मोर देन $50 बिलियन. और ऊपर से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छी है. हर एक साल हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं
जी.
तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. क्योंकि लगभग कोई 1.5 से 2 ट्रिलियन तक का जो एक्सपोर्ट है वर्ल्ड वाइड होता है, जिसमें हमारा पार्टिसिपेशन अभी भी लगभग कोई 5% के आसपास है। तो और हम एक अग्रेरियन इकोनॉमी है, तो हमारे पास तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आगे बढ़ने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और सरकार का लक्ष्य जो कुछ वर्ष पहले एक पॉलिसी जो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी सरकार ने घोषित की थी, जिसमें $250 बिलियन का एक लक्ष्य भी रखा गया है आने वाले टाइम में $100 बिलियन का, तो उसको अचीव करने के लिए तो बहुत ही हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि PLI जैसी स्कीम्स जो है वो और सपोर्ट करेंगी उस लक्ष्य को अटेन करने के लिए, जिससे कि खास करके जो रूरल डेवलपमेंट है, रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल एंटरप्राइजेस, उनको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती
है। यानी विकसित भारत की राह में हम अग्रसर हैं।
जी बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज फूड प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज टूवर्ड्स विकसित भारत।
जी,
मूविंग ऑन टू द क्रूड ऑयल मार्केट, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज टुडे एज अ डेडलाइन सेट बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर ईरान टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अप्रोच्ड। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 1.2% अप एट $111.07 पर बैरल, व्हाइल West Texas Intermediate WTI crude was trading over 3% higher at $115.81 per barrel when reports last came in. There seems to be no signs of abatement by Iran in terms of its counterattacks against US and Israel territory and forces and bases for that matter. Now that the deadline is expiring as we speak, what is going to happen to oil prices and what is the likely action to be taken by the US?
Yes, Arjun, this is very crucial juncture, crucial time for the world economy, because today's night is, according to US, is very crucial for the Iran. So we are expecting peace, as earlier mentioned, that if they are closing this war, they are coming to end, then the objective should be peace only. So we are at the very positive side, because we have to support the trajectory of world economy that for the billions of people. So expectations are that this war is ending with a great peace.
जी, आगे बढ़ते हैं.
In the bullion market, in the Indian bullion market, 24 karat gold was trading flat at 1,50,220 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.5% lower at 2,32,800 rupees per kilogram. A short while ago.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और मई अनुबंध वाली चांदी 0.5% गिरकर 2,32,213 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगी इस पर।
जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमने सिनेरियो डिस्कस किया कि अगर वॉर जो है वो पीस के साथ एंड होती है, उस केस में जो कॉमोडिटीज है उनको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी, डॉलर एक और वीक हो सकता है
जी।
लेकिन अगर एस्केलेशन हो जाती है तो फिर थोड़ा करेक्शन और एक्सपेक्टेड।
अनदर फैक्टर इन द राइज ऑफ प्राइसेस हैज बीन सैंक्शंस। डू यू सी द ईजिंग ऑफ सैंक्शंस आल्सो लोअरिंग गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस?
यस, दैट कैन आल्सो बी द अनदर सिनेरियो दैट दिस मे आल्सो इंपैक्ट द प्राइसेस सिग्निफिकेंटली।
And you see consumption going up in India when it comes to...
Consumption always goes up in India because India is the major consumer of the gold and we have the largest domestic reserves. So, India is always at the forefront of the consumption trajectory.
Dr. Sharma, कार्यक्रम में आने और अपनी महत्वपूर्ण अनुभवी टिप्पणियों से इस कार्यक्रम को सुसज्जित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, थैंक यू प्राची, थैंक यू अर्जुन।
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices continue the upward trend. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 23,100. Major Asian stock markets end mixed and global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।